आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 70 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वर्षायाण नमो लोए सौवसाहूण लक्ष्मी निवास निलयम् विलीन विलयम् निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके लेक्चर्स हुए हैं प्रवचन, और उस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक 2 उसके पृष्ठ संख्या 32 पर हम आ गए, 32। ये दूसरा पैराग्राफ है, वहां से पढ़ेंगे। अभीष्ट की भावना साध्यता। अभीष्ट है जो इष्ट है हमें, वो भैया किसी के सामने एक ओर खली रख दी जाए और एक ओर रत्न रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि तो जो तू मांगता हो सो मांग ले, या जो तू उठाना चाहता हो सो उठा ले, और वह उठा ले खल का टुकड़ा, तो उसे लोग तो पागल कहेंगे। यही हम आपकी भावना के अधीन ही दो बातें हैं, संसार में अनंत काल के लिए रुलना और अनंत काल के लिए संसार से छूटकर आनंदमय रहना। ये दोनों बातें हम आपको केवल भावना से मिलती हैं, जैसी भावना वैसा फल। उसमें किसी परद्रव्य का लगाव नहीं लगाया जाता है। एक निर्विकल्प निश्चल शुद्ध निज ज्ञान स्वभाव की रुचि जगे, यही मात्र मैं हूं, यानी मैं का निर्णय करना है ना, इतना ही मात्र मैं हूं, अन्य सब झूठ है, ये संसार में रुलाने के कारण है, ऐसी भावना बने, ज्ञान भावना जगे, तो इसके परिणाम से मुक्ति मिलेगी। क्या क्या मुक्ति के लिए करना है? केवल एक भाव, और ये लगता है इसको सबसे डिफिकल्ट है, मुक्ति है ना, अपने भाव के अधीन है, कोई पराधीनता नहीं, केवल भीतर में भावना बनाए, उसके फल में मोक्ष मिल जाएगा। और देखिए, जहां यह भाव बन जाए कि यह घर मेरा है, वैभव मेरा है, इन लोगों के कुछ भला कह देने से मेरी इज्जत बन जाएगी, मेरा बड़प्पन हो जाएगा, कर क्या रहा है यह? भीतर अपने ही प्रदेशों में रहते हुए एक भाव बना रहा है, भावों के अतिरिक्त यह अज्ञानी अन्य कुछ नहीं कर रहा है। भाव यानी उसका परिणाम, भावना यानी जो जैसे उसकी सोच जो है, क्या बारंबार ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये भावना हो रही है उसकी, उसके फलरूप क्या हो रहा है? अज्ञान दशा में संसार में रूल रहा है। जब ये भावना बनाएंगे, मैं तो मात्र ज्ञान मात्र हूँ, ये सब जुदी चीज है, मेरे से इससे कुछ लेना देना नहीं है, बारंबार उसका अभ्यास भी करे तो कहते उसके फल में मोक्ष मिल जाएगा। कल बात आई थी नहीं, ज्ञान भावना, ज्ञान भावना भी, अभी हमने आत्म भावना समाधि तंत्र उसमें यही तो बात देखी थी बारंबार। अज्ञान भावना के फल में यह संसार में जन्म मरण का चक्कर लगाकर रुलता फिर रहा है, कीट पतंगा बन रहा है, यानी कीड़े मकोड़े निगोद वनस्पति क्या क्या नहीं बनाए। देख लो, भावना के ही फल में अनंत दुख मिलता है और भावना के ही फल में अनंत आनंद मिलता है। उस रूप भवन है ना, अज्ञान रूप भवन, वो राग द्वेष रूप अपने को मान रहा है, परचीज रूप अपने को मान रहा है, यही उसकी अज्ञान भावना है। इतने पर भी कोई भावना दुख प्राप्त करने की ही बनाए तब उस पर क्या किया जाए। कोई स्वयं ही मरना चाह रहा है, बर्बाद होना चाह रहा है, तो उसे कौन रोके। शुद्ध भावना में निर्भयता, ज्ञान भावना कहो, शुद्ध भावना कहो, बात ठीक ही है। सारे विकास वो विकार नटखट सब भावना के अधीन है, चाहे विकास हो या विकार हो। इस भावना भाव का मर्म जिसने पहचान लिया, जिसने केवल निज आत्म स्वरूप से रिश्ता माना, उसे तो मरने के समय में भी भय नहीं रहता, क्योंकि मरण ही नहीं ना, उसने तो अपने को ज्ञान चैतन्य मात्र मान लिया, तो उसके मरण का कैसे भय रहेगा। जिसने मरण समय में अपना परद्रव्यों से कुछ संबंध नहीं माना है, उसे मरने का क्या डर, क्योंकि उसको तो मरण ही नहीं ना, पर के संयोग से ही ये जो मनुष्य पर्याय बनी है, और मरण तो उसी को कहते हैं शरीर का वियोग होने से। अब इसने पहले से मैं जुदा हूं ये मान लिया है, तो बाहरी पदार्थ संयोग में रहे या वियोग हो जाए, उससे तो उसको कोई दुख का सवाल ही नहीं हो सकता। जिसने परद्रव्यों में आत्मीयता, आत्मीयता ने अपनेपना, मेरापना, श्रद्धा नहीं बसाई है, उसे मौत से क्या डर। उसे तो यह विश्वास है कि जो मेरा वैभव है वह त्रिकाल भी मेरे से छूट नहीं सकता। हमने कितनी बार ये पढ़ा भी है ना, सुना भी है, बोला भी है, कि जो मेरा है वो मेरे से जुदा नहीं हो सकता, यानी जो त्रिकाल में मेरे से जुदा नहीं हो वो ही मेरा है। वो क्या है, अपने सारे अनंत गुण जो है वो अपने से कभी जुदे नहीं हो सकते। देखो क्या कहते हैं, उसे क्या विश्वास है, जो मेरा वैभव है वह त्रिकाल भी मेरे से छूट नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वह त्रिकाल भी मुझ में आ नहीं सकता। तो ये सारा धन वैभव तो दिख रहा है ना, अरे वो समय मात्र भी तेरा नहीं हुआ, तू मान रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, और कल्पना से दुखी हो रहे हैं। आपने कहाँ कमाया, कहाँ की मेहनत की, हा? विकल्प किए केवल, पैसा अपने कारण आता है, पैसा अपने कारण जाता है, आता है तो आपकी इच्छा से, जाता क्यों है फिर अपनी इच्छा नहीं की तो क्यों गया, नुकसान भी तो होता है ना, नहीं सोचे ऐसा भी, बहुत एक्सपीरियंस हो तो पैसा क्यों जा रहा है। ज्ञान स्वरूप की यानी पहले में पहले ये मेरे से भिन्न है, जुदे है, मालूम है आपको, फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मेरा नहीं हो त्रिकाल मुझ में आ नहीं सकता, फिर भी वो क्यों नहीं आता, अरे मेरे पास है वो क्यों गया, इसी की चिंता में डूब रहा है, रात दिन यही तो कर रहा है और क्या कर रहा है। यानी जितना हमारा पूरे लाइफ का समय पैसे के पीछे जा रहा है, उसका 1,00,000वां भाग भी कहते मैं तो कहूं, उसके विचार में भी नहीं जाता है। दिन बाकी पूरे लाइफ का छोड़ दो, पूरे दिन का हिसाब लगाओ ना, 24 घंटे का 6-7 घंटे तो सोने में चले जाते हैं, फिर खाने पीने में कितने जाते हैं, उसकी तैयारी में कितने चले जाते हैं, पैसा कमाने के लिए कितने जाते हैं, उसके हिसाब किताब रखने के लिए कितना जाता है, और फिर बचा कुचा समय इतने थक जाते हैं कि आत्मा के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है ना। ज्ञान स्वरूप की उपासना में ये सब चमत्कार बसे हुए हैं। चमत्कार क्या, आनंद मिल जाए, इससे भी बढ़कर कुछ चमत्कार है क्या दुनिया में। ऐसा विशुद्ध आनंद मिले जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं, क्योंकि जिसके पीछे दुख होता है उसको सुख भी नहीं कहते। ऐसा आनंद पाने का उपाय बन जाए तो इससे बढ़कर और चमत्कार क्या अच्छा है। यह चीज तब होगी जब अपने आप को अकिंचन माना जाए। अकिंचन है, सभी परद्रव्यों से मैं छूटा ही हूं, रहित ही हूं, मेरा जगत में कुछ नहीं है, ये तो अपना स्वभाव है, अकिंचन तो अपना स्वभाव है। फिर भी हमने परिग्रह वाले वो फिर मैं बड़ा हो गया ऐसा मान लिया है। परिग्रह से मेरा अस्तित्व है, वो छूट गया नष्ट हो जाए तो हाय मैं मर गया मानता है। तो कहते मेरा जगत में कुछ नहीं है, जिन्हें हम इष्ट मित्र कह रहे हैं, परिवार जन कह रहे हैं, उनके ही कारण हमें विपदा आ जाए, मरण आ जाए, इतना तक भी हो सकता है, हो जाता है। निर्मोह में निर्भयता, पहले शुद्ध भावना में कहा, तो कहते निर्मोह वही तो बात है, जिनको मोह ममता नहीं है, ज्ञान स्वरूप आनंद घन अपने सहज स्वभाव से ही जिनकी प्रीति लगी है, उतने निज स्वरूप मात्र में जो निज के सत्व का अनुभवन कर रहा है। क्या कहते हैं? निज स्वरूप मात्र में निज के सत्व का अनुभव, इसका अर्थ क्या है मिली भाई? निज स्वरूप मात्र में निज के सत्व का अनुभव कर रहा है। निज स्वरूप क्या है? चैतन्य मात्र में, उसमें अपना सत्व है, अपना अस्तित्व है, यानी मैं किसमें मान रहा है? तो जो हम कायम ही रहने वाला अपना स्वभाव भाव, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप। क्या कहते हैं? निज स्वरूप मात्र में जो निज के सत्व का अनुभवन कर रहे है, सात तत्वों की भाषा में बोलने तो जीव तत्व, जो मैं स्वयं हूं, निज तत्व है, और वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सत्व है, वही मेरा अस्तित्व है, वही मैं हूं। ऐसे ज्ञानी संतों को न इस लोक का भय है, न परलोक का भय है। इस लोक कहने अभी मेरा क्या होगा इस भव में, मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे पैसे निकल जाएंगे, तो ऐसा कोई भय नहीं है। न परलोक का भय है, मरकर कहां जाऊंगा? अरे मेरा तो अस्तित्व, मेरा सत्व तो कायम है, वो अनादि अनंत है, वो कभी नष्ट हुआ ही नहीं आज तक, और न कभी होगा। तो परलोक क्या होता है मेरे लिए? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो चाहे जिस आयु भी बंदी हो, कहीं पर भी चला जाओ, मेरा सत्व तो मैं ही हूं। जैसा यहां हूं मैं भी जुदा हूं, ऐसे वहां पर भी जुदा हूं। तो न परलोक का भय रहेगा, न वेदना का, न मरण का। वेदना का भी तीव्र किसको होगा? जो तीव्र मोह होगा तो उसमें वो और ज्यादा उसमें वेदना हो जाएगी। ऐसे पूछते ना ज्ञानी को, क्या उसका ज्ञान नहीं होता है वेदना का? वो तो अपन उसमें जितना राग अधिक है उतना उसमें दुख ज्यादा हो रहा है। शरीर की तो कोई जख्म हो जाते तो उसके बाद छोड़ो, वस्त्र फट जाए तो क्यों दुख होता है फिर? वो तो शरीर का अंग नहीं है, एकत्व है उसमें। शरीर भी कट जाने से जो दुख हो रहा है उसमें एकत्व होने के कारण हो रहा है, यही मैं हूं ये मान्यता से हो रहा है। तो न वेदना का, न मरण का, न अरक्षा का, मेरा कोई रक्षण करता नहीं है। अरे रक्षण क्या, मैं तो अनादि अनंत हूं, टिका हूं, अपने से रक्षित हूं, किसी परद्रव्य से, किसी दवा दारू से, मेडिसिन जिसको कहेंगे उससे, किसी से अपना रक्षण नहीं है, न किसी आकस्मिक घटना का। क्योंकि जो होना है वो तो निश्चित है, वैसा आकस्मिक तो कुछ ही नहीं है, अरिहंत भगवान ने तो सब कुछ जाना ही है। यहाँ अगुप्ती का नाम नहीं लिया, अगुप्ती को भी ले, अगुप्ती ने ऐसे कोई मेरे गुप्त स्थान चाहिए जरा मैं छुप जाऊं तो कहते मैं स्वयं ऐसा स्थान हूं, इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो उसका भी भय नहीं रहेगा। जो कहते हैं ना सप्त भयों का नाश हो जाता है, तो कहते ज्ञानी संतों को ये कोई भय नहीं रहा। दुख उन्हें होता है जिनका दिल फंसा है कहीं औरों की ओर, निज गेह से छूटकर अन्यत्र भोगने की जिनके नौबत आ गई। गेह है ना अपना ग्रह, मैं स्वयं निज तत्व जो है उसको छोड़कर जो अन्य पर पदार्थों को मैं भोग सकता हूं, उनकी जो रुचि पड़ी है उसकी बात हो रही है, उसके कारण दुख है। बुद्धिमानी उस सदगृहस्थ की है जो अपना मरण समय सुधार ले। मरण के समय में राग द्वेष मोह न जगे, समता बनी रहे, धैर्य बना रहे। ये तब भी हो सकता है जब उसने कुछ तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है। ऐसे बस मैं शांत रह जाऊं ऐसा तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जिसने शरीर को अपना मान लिया है उसकी ऐसी समता बनी नहीं रह सकती। मारणांतिक कष्ट, देखो भैया प्रायः कष्ट भी सब इकट्ठा होकर मरण के समय ही आता है। देखते भी है कि मरण के समय में कितनी वेदना हो जाती है, अंग शिथिल हो जाते हैं, आत्मा खींच रहा है, गले के नीचे पानी नहीं उतरता, प्यास तेज लग रही है, किसी को कुछ बता नहीं सकते, करवट बदलते हैं तो बदल नहीं सकते, और तो कहानी क्या कहे। यो कह लो कि सारे कष्ट मिलजुल कर वहां ही आते हैं जहां इन कष्टों की दाल गल सके। जहां कुछ देह में बल है वहां कष्टों की दाल पूरी नहीं गलती, यानी कष्ट अब हावी नहीं हो सकते, ये कहना चाहते। इसलिए सारे कष्ट खींच खींच कर वृद्ध के ही पास पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में भी ज्ञान में बड़ा बल है, थोड़ी ज्ञान शक्ति लगाने से ये सब कष्ट भाग जाते हैं। ये कल्पना से ज्यादा कष्ट मान लिए हमने, ये शरीर की अवस्था मेरी अवस्था है मान लेते हैं, तो फिर वो दुर्बल हो जाए, पैरलाइज हो जाए, जो कुछ हो जाए, उसके अंग कट जाए, तो मेरी अवस्था मान लेता है और दुखी होता है। ज्ञान शक्ति लगाने से ये कष्ट भाग जाते हैं। चित्त में मात्र इतना ही बसाना है, मैं तो ज्ञान पुंज मात्र हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं। लो सारे कष्ट भाग जाते हैं। तो मैं स्त्री हूं कि मैं पुत्री हूं कि मैं माँ हूं कि मैं बहन हूं, ये कोई विकल्प ही नहीं रहे ना यहाँ पर। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान पुंज हूं, बताए ना। हिम्मत करने वाले हिम्मत करते हैं। जैसे किसी बुढ़िया के घर में दो चार चोर घुसाए तो बुढ़िया जरा सा खांस भर दे कि सारे चोर वापिस भागने की सोचते हैं और भाग जाते हैं। तो जैसे खांसी मात्र से चोर खिसक जाते हैं, चोरों की बात कह रहे डाकुओं की नहीं, इसलिए कि डाकू तो उसको मार डालेंगे, ये कह रहे। ऐसे ही इस ज्ञान की क्षणिक झलक से ये सारे संकट भाग जाते हैं। कष्ट निवारण का मौलिक उपाय, भैया कष्टों को जीतना है ना तो बाहरी उपचार करके कहां तक जीतोगे। जैसे मेंढकों का तौलना बड़ा कठिन है, आप विचार करो, मेंढक को तौलना है, मेंढक क्या है, फटक फटक कूद दे जाते हैं, वो तो एक स्थिर एक जगह नहीं बैठेंगे, तो हमने पकड़ के वो तराजू में डाले तो दूसरा फिर निकालते निकालते वो वहां से कूद पड़ेगा, ये कहते हैं मेंढकों को तौलना बड़ा कठिन है। कोई जिंदे मेंढक 1 किलो तौल कर दिखा तो दे, पलड़े पर 2 मेंढक रखे जाएंगे तो 2 उछल जाएंगे। तो जैसे जिंदा मेंढकों का तौलना कठिन है, ऐसे ही बाहरी उपचार कर करके कष्टों का मिटाना कठिन है। कहां तक बाहरी उपचार करके कष्टों को मिटाओगे। कभी पुण्य अनुकूल हो तो कहो कष्ट मिटाने का कोई रास्ता बनाए। कष्टों के मिटाने का उपाय एक ज्ञान स्वरूप का अनुभव है। मैं ज्ञान मात्र हूं, यहां केवल ज्ञान विकास के अन्य कुछ नहीं है, यह दृष्टि बने, समता जगे, समाधि मरण बने, तो जैन धर्म का पाना और तपव्रत संयम आदि का करना सब सफल हो जाएगा। यानी बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मा की दृष्टि से वो भी कुछ काम का नहीं है। ऐसी दृष्टि बनाओ कि मेरा समाधि मरण हो जाए और उसके योग्य अभी से ज्ञान साधन का विशेष उपाय बनाओ। अति परिचितेषु अज्ञा नवे भवेत् प्रीतिरिति जनवाद त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणोश्वरतः। याद है ना अति परिचयात अवज्ञा, ऐसा कहते ना, अति परिचितेषु अवज्ञा, नवे भवेत प्रीति इति ही जनवादः। यानी नए नए से प्रीति होती है और बहुत परिचय से अवज्ञा हो जाती है। देखो हम पेज नंबर यहां से बढ़ते 92 का अर्थ देख लेते हैं। जिनका बहुत परिचय संसर्ग भया होए, तीन विषय तो अनादर होई और नवीन विषय प्रीति होई, ऐसी लोकोक्ति है, लोक में ऐसे कहने में आता है। बहुरी तू ऐसे रागादि दोष नित विषय आसक्त होत संता और सम्यक दर्शनादि गुणनि विषय प्रीति न करत संता, तिस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करे हैं। यानी राग द्वेष वगैरह से तू बहुत परिचय है तो उसकी तो अवज्ञा करनी चाहिए और सम्यक तो गुण से वो नया है तो उससे अधिक प्रीति होनी चाहिए, तो ऐसा तू नहीं करता है, वो लोकोक्ति भी झूठी हो जाती है। यही इसी का भावार्थ है। मिथ्या कैसे करे हैं। हाँ, लोक विषय तो ऐसे प्रसिद्ध है, जाका बहुत सेवन भया हो तीस विषय अनादर होई और जो अपूर्व लाभ होई तीस विषय प्रीति होई। सो तेरे रागादि का सेवन तो अनादिते भया, तीस विषय ही तेरे आसक्तता पाई है और सम्यक दर्शनादि का अपूर्व लाभ है, तीस विषय तेरी प्रीति ना ही है। सो वह लोक प्रसिद्ध वचन झूठ कैसे करे है, यह बड़ा आश्चर्य है। कैसे करे, तू क्यों कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, यानी तू कर रहा है यह आश्चर्य है। नहीं कर रहा है, नहीं उसमें क्या लिखा, नहीं कर रहा।
प्रीति न करके इस लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है, अर्थ में लिखा।
हाँ, कैसे करता है ने? ये कैसे कर रहा है नहीं, वो तू करता है, बड़ा आश्चर्य है।
लोकोक्ति को मिथ्या कैसे करता है, माने नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। आप उसका उस तरह से
देखो, लोकोक्ति क्या है, जो जिसके अति परिचय उसकी अवज्ञा होती है और नए के साथ प्रीति होती है। तू रागादि अनादि से कर रहा है, उससे अति परिचित है, फिर भी तू उसकी अवज्ञा नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं। लोकोक्ति को मिथ्या कैसे कर रहे हैं, तू कर रहा है, ये कितनी विचित्र बात है, ये कह रहे हैं। अभी इसमें क्या लिखते देखेंगे।
माने उन्होंने क्या किया कि रागादि सम्यक दर्शन आदि नवीन गुणों में प्रीति न करता है,
इसीलिए लोकोक्ति झूठ हो जाती है। लोकोक्ति झूठ हो रही है ना, ये कैसे कर सकता है तू ऐसा, लोकोक्ति को क्यों झूठ कर रहा है ये इस तरह से। देखो, लोक रीति व अज्ञान रीति। लोक की ऐसी रीति है कि जिन पदार्थ में अधिक परिचय हो जाता है उनमें इस मनुष्य की अवज्ञा हो जाती है और नवीन वस्तु का संबंध हो तो उसमें प्रीति हो जाती है। ऐसी लोकोक्ति उक्ति है ना, उक्ति शब्द है वो, लोकोक्ति क और त। अथवा लोक रीति है। प्राय ऐसा देखा भी जाता है कि जिनके संग अधिक रहना होता है उनमें अवज्ञा हो जाती है, प्रीति उत्सुकता उत्साह फिर नहीं रहता है। लेकिन हे आत्मन, यहां तुम उस लोकोक्ति को भी झूठा बना रहे हो। यह शरीर अनादिकाल से तुम्हें मिलता चला रहा है, इससे ज्यादा और परिचय की बात क्या कही जाए। ये राग द्वेष विषय कषाय के परिणाम अनादिकाल से तेरे हाथ चले आ रहे, साथ चले आ रहे, कितना चिरकाल परिचय है, इसमें तुझे अवज्ञा क्यों नहीं होती, ये समझ में है ना। हाँ, इन रागादिक भावों का इतना अनादिकालीन परिचय है, इन विषय कषाय भावों से इनसे तुझे ग्लानी नहीं होती और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र जो आत्मा का कल्याण करते हैं इनको अभी तक कभी भी प्राप्त नहीं किया है, ऐसे गुणों में तो क्यों रति नहीं करता है, तू तो उल्टी उल्टी चाल चल रहा है, ये समझ में है ना। ये लोकोक्ति को तो झूठ ठहरा रहा है, ये कहना चाहते। स्थूल स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर। इस जीव के साथ दो प्रकार के शरीर लगे हुए हैं, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर तो तेजस और कारमान है, जिसको कहेंगे तेजस शरीर और कारमान शरीर। स्थूल शरीर यह औदारिक हम आप लोगों के जो लगा है वह है, मनुष्य और तिरियंचों के औदारिक शरीर होता है। इसके अतिरिक्त एक वैकिरिक शरीर भी होता है, किसके होता है मालूम है मनीषा बेन? हनार्की को और देवमो। आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनियों के प्रकट होता है, वो तो अंतर्मूर्त वाला है, अंतर्मूर्त के लिए प्रकट हो सकता है। इन पांच प्रकार के शरीरों में तेजस और कारमान ये दो शरीर जो कि सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं, वह इस जीव के साथ अनंत काल से अब तक अनविच्छिन्न धारा से, अविच्छिन्न भी कहते उसको, इन्होंने अनविच्छिन्न कहा, यानी कभी वो उसका संपर्क छूटा नहीं है। यह औदारिक शरीर तो छोड़कर परभव में भी चला जाता है, कभी औदारिक से वैकरिक भी धारण करता है, वैकरिक से औदारिक होता है, औदारिक एक छोड़कर दूसरा औदारिक धारण करता है, यानी बीच में छूट भी सकता है वो एक दो समय के लिए, परंतु तेजस और कारमान कभी छूटा नहीं अनादि से। इसलिए कहते अनविच्छिन्न धारा से जिसका कभी सेकंड को भी वियोग नहीं हुआ, सेकंड क्या एक समय के लिए भी नहीं हुआ, इस तरह से चले आ रहे हैं। और यह स्थूल शरीर जो मनुष्य के ढांचे में है, मरकर कल कोई और शरीर बन गया तो स्थूल शरीर का तो परिवर्तन हो रहा है। आज मनुष्य का है, कल हाथी का है, फिर कल चींटी का है, विचित्र विचित्र परिवर्तन होते हैं। किंतु तेजस और कारमान शरीर इस जीव के साथ निरंतर लगा आया है, इन दोनों शरीरों का कभी वियोग हो जाए तो फिर यह शरीर सदा के लिए विमुक्त हो जाएगा। नहीं होता है, चौदहवें तक है, चौदहवें के अंत तक है, यानी तभी क्या तेजस शरीर के परमाणु भी छूट रहे, कारमान के भी और औदारिक शरीर के भी, सब निकल जाते हैं और जीव पूरा विमुक्त हो जाता है, फिर उसको किसी शरीर के साथ संबंध नहीं होता। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में भी मोही के अवज्ञा का अभाव। भैया कर्मों से भी तो अब तक विच्छेद रति संबंध बना आया है, विच्छेद रहित चाहिए ना, विच्छेद रति संबंध क्या होता है, विच्छेद रहित होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे ऊपर हमने देखा कि उसका अविच्छिन्न धारा से आ रहा है, वैसे इसके भी विच्छेद रहित वो रति हो गया, रहित चाहिए, यानी उसका कभी बीच में विच्छेद नहीं हुआ, कभी वो शरीर नहीं था ऐसा कभी नहीं हुआ, यानी कर्म अनादि से है ये कहना चाहते। उन कर्मों में तुझे अप्रीति नहीं होती, भाव कर्म क्रोध मान माया और लोभ आदि भाव अदलते बदलते हैं, किंतु कोई ना कोई विभाव सदा रहता चला आया है। कितने दिनों का परिचय इन राग आदि भावों से है, किंतु तुझे इनमें अप्रीति नहीं होती, ये कह रहे हैं। यह भी प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि नहीं प्रसिद्ध है, यह भी प्रसिद्ध है कि जिसका बहुत बहुत सेवन हुआ हो उसी कषाय से अनादर हो जाता है, और कोई वस्तु अपूर्व प्राप्त हो उसमें ही प्रीति हो जाए। तेरे रागादिक भावों का सेवन अनादिकाल से हुआ, यही तो रागादि भाव तेरे क्लेश बढ़ा रहे हैं और रत्नत्रय का लाभ नहीं होता है। रत्नत्रय का लाभ एक अपूर्व लाभ है, इसमें तेरी प्रीति नहीं होती। बड़े आश्चर्य की बात है कि तू बड़े लोक विधानों को भी उल्टा कर देने में तत्पर हो रहा है, बात है ना, उसको मिथ्या कर रहा है, लोकोक्ति को मिथ्या कर रहा है, कैसे कर रहे ना, यह कैसे कर रहे ना, आश्चर्य है। रागादिकों की माया रूपता पर एक दृष्टांत, यानी वो परमार्थ से नहीं है, मायामयी है ना, कुछ है ही नहीं ऐसे ही, क्योंकि एक समय में उत्पन्न हुए जीव के पर्याय में है, पर वो कुछ वस्तु नहीं है ऐसा कहते। क्यों वस्तु नहीं? क्योंकि हम अनादि ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हम स्वयं है, और एक पर्याय में समय मात्र के लिए कर्मों के उदय में होने वाली जीव की अवस्था है, इसलिए कहते वो कुछ वस्तु ही नहीं है। देखो ये रागादिक भाव परमार्थ भाव नहीं है, कुछ वस्तु नहीं करते क्या, परमार्थ भाव नहीं है, ये किसी के बनकर नहीं रह सकते। मिलिंद भाई क्यों नहीं बनकर रह सकते? रागादि भाव परमार्थ भाव नहीं, किसी के बनकर नहीं रह सकते, एक समय की पर्याय एक समय की है ना, और वो तो चेंज होती रहती है। एक ही समान वो राग ही करता रहो, क्रोध ही करता रहे, हम कहीं ना हम करते रहते घंटे भर, अरे उसमें भी हीनातिकता होती है, अलग अलग टाइप हो जाते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, जैसे हाथ आदि किसी वस्तु की कहीं छाया पड़ती हो तो वह छाया न तो हाथ की है और न किसी वस्तु की है, क्योंकि यदि वस्तु की छाया होती तो सदा उसमें बनकर रहती। क्या कहा, ये कहने में आती है हाथ की छाया, ये हमने हाथ पकड़ा यहाँ अगेंस्ट लाइट छाव पड़ गई ना, यहाँ आपकी पुस्तक पर दिख रही नहीं छाया, वो हाथ की होती तो हाथ के साथ सदा बनी रहनी चाहिए। अभी हम वो लाइट का एंगल बदल देते हैं या वो लाइट बंद कर देते हैं, ख्याल में आती ना बात, तो कहें छाया हाथ की होती तो हाथ में ही रहती, हाथ से बाहर न होती। क्या कहना चाहते हैं, जिसका जो होता है उसका द्रव्य क्षेत्र काल वही होता है। अभी पर्याय तो भले एक समय की है तो द्रव्य और क्षेत्र तो वही होगा ना, जिस द्रव्य का जो गुण है उसका तो क्षेत्र वही है, उसका काल भी वही अनादि अनंत है, और जिसकी जो पर्याय है उसका द्रव्य वही है, क्षेत्र भी उतना ही है जो अपना द्रव्य प्रमाण है, काल भले एक समय का है, उस समय वो द्रव्य के साथ तद्रूप है, द्रव्य के बाहर नहीं जा सकती। अगर छाया हाथ की है तो हाथ में रहनी चाहिए, वो हाथ से बाहर नहीं आती, ये कहना चाहते। ये तो सिंपल लौकिक दृष्टांत है। तो परमार्थ से छाया किसी को नहीं कह सकते हैं। धूप में हम किसी मार्ग में चलते हैं तो इस शरीर की छाया पड़ती है, तब आप बताओ कि वह छाया किसकी है? वह छाया इस शरीर की नहीं है। क्या वह छाया इस पृथ्वी की है? यदि पृथ्वी की छाया होती तो जब चाहे पृथ्वी में रहती। आप पृथ्वी पर खड़े हो या न खड़े हो, छाया सदा पृथ्वी पर रहनी चाहिए। जैसे आपके खड़े रहने से या न खड़े रहने से पृथ्वी का जैसा रूप है वैसा ही रहेगा, अर्थात आपके खड़े रहने से पृथ्वी के रूप में कोई अंतर नहीं आएगा, और जो भी विशेषताएं पृथ्वी में हैं आपके रहने या न रहने से सदा रहेगी। क्या इस तरह छाया पृथ्वी की बनकर हुई है? तो वह छाया परमार्थ से पृथ्वी की नहीं है। तो क्या आपकी है? आपका रूप है, वह आप में समाई हुई है, आपसे बाहर है क्या? यानी आपकी कोई चीज आपके बाहर नहीं हो सकती, इसे पूछते हैं आपसे बाहर है क्या, यानी आपका कुछ नहीं हो सकता आपके बाहर। आपका आकार प्रकार जो कुछ है वह आप में ही समाया है, आपके बाहर नहीं है। यानी हमारी जो कुछ चीज है वह हमारे अपने में है, हमसे बाहर कुछ नहीं हो सकती। हाथ की छाया हाथ में ही समाई हो, आप में ही समाई हो, यह भी नहीं है। तब छाया को किसकी बताई जाए? वह छाया तो माया रूप है। इसी प्रकार ये राग द्वेष और कषाय जिनके कारण इतने हैरान हो रहे हैं, ये सब माया रूप है, वास्तविक परमार्थभूत कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो आत्मा के किसी गुण का वो परिणमन है, क्योंकि आत्मा में कोई अनंत गुण है, उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं है कि राग रूप परिणमित हो, और ना ही वो कुछ परद्रव्य की अवस्था है। एक समय में होने वाली जीव के वो है जीव के पर्याय में, परंतु वो वास्तविक जीव की नहीं है, ये कहना चाहते। तो रागादिको की माया रूपता। अच्छा यह बताओ कि ये रागादिक भाव किसके है? परमार्थ, देखो परमार्थ है ने रियलिटी, इनका कौन अधिकारी है? यदि यह बताओगे कि यह परमार्थ से आत्मा के है तो फिर आकारिक भाव आत्मा में सदा ही रहने चाहिए, ये न्याय से सिद्ध कर रहे। जिसको हम कहते हैं ये आत्मा का स्वभाव हो तो आत्मा में त्रिकाल रहना चाहिए, रागादि आत्मा के है तो आत्मा के सदा होने, क्योंकि जिस वस्तु की जो चीज है उसके साथ सदा रहती है। यदि राग आत्मा का है तो आत्मा में कायम रहना चाहिए, सिद्ध भगवान में भी रहना चाहिए। जैसे कि ज्ञान दर्शन और आनंद आदि गुण आत्मा के है, यो ये रागादिक भाव आत्मा में सदा तो रहते नहीं है। एक बात क्या हुई, सदा रहते नहीं। दूसरी बात, प्रथम तो ये रागादिक भाव अदल बदल कर बने रहते हैं, एक जैसा तो रहता नहीं है, और कभी बिल्कुल भी मिट सकते हैं, मिट सकते हैं क्योंकि ऐसे तो है ना वितरागी हमारे प्रभु। अच्छा, तो क्या रागादिक भाव कर्मों के है? इन्हें पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, आत्मा के होते तो कायम रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये हीनादिक भी होते रहते हैं और बदलते भी है, कभी क्रोध कभी मान कभी माया वगैरह भी होते हैं, और किसी जीव में वो बिल्कुल नहीं है ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो आत्मा के नहीं, वो सिद्ध किया। तो क्या कर्म के है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कर्म के उदय के निमित्त से मिले हैं ना, तो कहते तो इन्हें कर्मों के भी नहीं कह सकते। कर्मों के होते तो ये रागादिक नहीं, रागादिक भाव कर्मों में ही समाये रहते। कर्मों से बाहर फिर ये क्यों हुए, जीव में आत्मा में और इस आधार में क्यों आ गए? आत्मा के आधार से रहे ना अभी, तो उसमें क्यों आ गए कर्मों के है? तो ये रागादिक भाव कर्मों के भी नहीं है, ये सब रागादिक भाव माया रूप है। तो कहते हैरानी का कारण माया है, परमार्थ स्वरूप नहीं है, माया के जड़ नहीं मूल नहीं, ऐसे निराधार माया के कारण हैरानी बड़ी होती है। सबसे बड़े हैरान हो रहे हैं, उसका कोई जड़ नहीं है, कोई मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है, ख्याल में आने है? जिसके कारण हम रुल रहे हैं। जो अपना मूल है वह परमार्थ स्वरूप है, उसके कारण हैरानी नहीं होती। देखो सात तत्वों में हम देखे ना, ये तो आश्रय तत्व है, जुदे है, जीव से जीव के नहीं है, ये कितना स्पष्ट बता दिया ना, वो तो माया है, किसके है ना, जीव के है ना कर्म के है, फिर भी उसमें आत्मा में हो रहे है, क्यों आ गए है? अभी उसने अपने अज्ञान मान लिया और ये इसको अपना स्वरूप मान लिया, ये उसकी भूल हुई, भूल से हैरानी। देखो भैया, भूल से हैरानी है, आत्मा में हैरानी बसी हुई नहीं है, किंतु उस भूल को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो उसके कौन चिकित्सा करे? चिकित्सा समझते हैं? चिकित्सा का अर्थ क्या होता है? केवल परीक्षा नहीं, ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, चिकित्सालय होता है ना। हाँ, कुछ बोला आपने।
हाँ, यहाँ पे जो माया कहा है ना, तो एग्जैक्टली माया का अर्थ क्या है ना, इल्यूजन जैसे आभास
इल्यूजन है ना, कोई परमार्थ चीज नहीं है, केवल इल्यूजन नहीं है, उसने तो राग को अपना माना है, ये उसका भ्रम है, उसकी भूल है ना, वो जीव का कोई कायमी स्वभाव है और ना वो कर्मों में हो रही है, कल्पना से वो हो रहे हैं ज्यादा, ये उसकी मान्यता में मिथ्या भ्रम है ना। क्या भ्रम है? कि मैं शरीर रूप हूं और ये राग द्वेष मेरा स्वभाव है, ये राग नहीं करूं ये करूं तो मेरा कल्याण होगा, उसमें हितरूप माना उसको, वो अपना कार्य माना, करने जैसा माना। तो कहते परमार्थ है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमार्थ भूत है, कि आत्मा की हो, क्योंकि आत्मा में क्या है, उसके गुण आत्मा के है, तो ऐसा कोई उसमें गुण नहीं है। इतने अनंत गुणों का वर्णन आता है, कितने गुणों का भी 47 शक्तियों में भी बताते हैं। ऐसा एक भी गुण नहीं है कि जो राग को करे, पर ऐसा एक स्पेशल गुण है कि जो राग को न करे, मालूम है ना? वैभविक की शक्ति का वो कार्य नहीं है, राग को न करे ऐसा गुण आत्मा में है। क्या कहा? आत्मा में अनंत गुण है, उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं कि जो राग को करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोचो, बहुत बहुत अच्छी है, सोच कर आना। हाँ देखो देखो, फिर सुनो, आत्मा में अनंत गुण है तो राग को करे ऐसा एक भी गुण नहीं है। गुण नहीं है, एक भी गुण ऐसा नहीं कि जो राग को करता है, परंतु एक ऐसा स्पेशल गुण है जो राग को नहीं करता, उसका नाम आपको बताना है। 47 शक्तियों में नहीं करता। हाँ लिख के लो। नहीं, अभाव भाव तो वर्तमान पर्याय का अभाव होकर नेक्स्ट पर्याय होती ही है, उसको अभाव भाव का अभाव भाव अभाव 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 यानी जो नहीं होने वाली पर्याय नहीं ही होती, उसको अभाव अभाव कहते हैं। ये भाव अभाव शक्तियां 6 अलग है। चलो अभी आज कल जरा देख के आना। हाँ ये कल बताना आपको, बहुत अच्छा, ऐसा हमको चाहिए। हाँ थोड़ा ऐसा घर में स्टूडेंट ऐसा चाहिए। हाँ चलो शुभाबेन, आपने प्रश्न सुना ना?
ऐसा जो गुण है कि जो राग नहीं कराता,
नहीं करता, हाँ, अनंत गुणों में एक भी गुण ऐसा नहीं है कि जो राग को करे, परंतु एक स्पेशल गुण ऐसा है कि जो राग को न करे, वो हमारी मनीषा बहन कल बताने वाली है, पर भी उत्तर आप भी सोच के रखो। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। ये नीचे पढ़ रहे थे 35 नंबर के पृष्ठ पर, नीचे से दूसरी लाइन, भूल से हैरानी। हाँ चिकित्सा ने क्या है तो उसकी कौन चिकित्सा करे, ने ट्रीटमेंट, उसका इलाज कौन करे? डायग्नोज भी होता है, इलाज भी होता है। हाँ जिस क्षण भूल त्याग दे उसी क्षण आत्मा में आनंद प्रकट हो जाएगा। कल बता नहीं, इनको जरा ढूंढने दो ना, वह कार्य कारण वाले वो सभी परद्रव्यों के साथ लगा लेना। आत्मा किसी का कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, वो अलग है। जरा 47 शक्ति ढूंढ लो आज घर जाके, थोड़ी थोड़ी रिवीजन, थोड़ा होमवर्क चाहिए कि नहीं आपको? रेडीमेड ये रेडीमेड की बात है ना, उसकी महत्ता नहीं, ऐसा कहते अति परिचय अवज्ञा हो जाती है। ये दुबई वालों ने हमको बुलाया था 2002 में, सुनो उन्होंने कैसा बुलाया मालूम है? पहले हमारी पुस्तकें उनके हाथ में गई थी, अपनी जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य वगैरह, करना नियोग भी आई थी तभी, तो पहले उन्होंने पुस्तकें मंगवाई, उनके पास जितना ग्रुप है सब में उसका अभ्यास किया, और वो एक एक जो चैप्टर है उसके ऊपर प्रश्न और उत्तर रूप में तैयार किए, एक एक प्रश्न पुस्तक के ऊपर 60-70 प्रश्न और उत्तर तैयार किए, सबने अच्छे अभ्यास किया उसका, उसकी पुस्तक जीरोक्स बनकर सबके पास थी। अभ्यास करने के बाद फिर हमको बुलाया, और यहाँ तो दो बार उन्होंने दो लोगों को तो प्रवचन सुनने को भी भेजा, कैसे क्या उसका रिपोर्ट लाओ करके, दो तीन, एक कीर्ति भाई और दूसरे भी एक कोई भाई आए थे, फिर उन्होंने हमको वहां बुलाया और फिर उसके डिटेल में उन्होंने अभ्यास किया। तो वो तो यही कहते कि आपके यहाँ तो लोग बस खाली आते सुनते, वो कुछ अपना अभ्यास नहीं करते हैं। वो संदीप जी ने बताया था तभी वैसा, यानी तब उनको उसका मर्म और ज्यादा ख्याल में आता है, क्योंकि पहले से थोड़े परिचय है उसका, तो उसमें जो सूक्ष्मता होती है, वो सूक्ष्मता भले हम पहली बार सुनने वालों को भी बताएं, पर उनको वो कैच नहीं होती इतनी। जिन्होंने अभ्यास करके फिर सुना है, उनको ज्यादा और भाषित होता है उसे। हाँ, जिस क्षण भूल त्याग दे उसी क्षण, अभी 36 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं, आत्मा में आनंद प्रकट हो जाएगा। कोई भूल को ही अपनी होशियारी माने तो भूल को त्याग कैसे देगा। एक ग्राम में प्रारंभ में एक बढ़ई का घर था। वह बड़ा मस्खरा था। बढ़ई यानी लोहार के हलवाई क्या है बढ़ई? ठीक, कोई जो होगा। वह बड़ा मस्खरा था। जो भी मुसाफिर उधर से निकले उसके पूछने पर वह गलत रास्ता बता देता था। रास्ता हो किसी दिशा को और बता दे किसी दिशा को। साथ ही वह यह विश्वास भी दिला देता था, गांव के सभी लोग मस्खरे हैं, उनके कहने में न आना, नहीं तो तुम्हें फिर लौट कर आना पड़ेगा। अब एक मुसाफिर वहां से निकला और उसने उससे किसी गांव का रास्ता पूछा। उसने गांव को दक्षिण में बता दिया, किंतु था वह पूरब में। वह दक्षिण की ओर चला। गांव के भीतर किसी दूसरे से उस गांव का रास्ता पूछा तो उसने पूरब को बताया। वह समझ गया कि यह सच है, यहाँ के लोग मस्खरे हैं। इस तरह चार छह लोगों से पूछा तो सभी ने पूरब में बताया। उसे पूरा शक हो गया, वह बड़े ही ठीक कहता था, यहाँ के सभी लोग मस्खरे हैं। अब तो वह बेचारा दक्षिण में चलकर खूब भटक कर एक गांव में पहुंचा। वहां के लोगों से पूछा तो वहां के लोगों ने बताया कि तुम रास्ता भूल गए, पहले यहां से उत्तर जाओ फिर पूरब को जाना। गांव के लोगों ने कहा कि एक बढ़ई ने तुमको यह रास्ता बताया होगा। बेचारा राहगर उसी गांव लौट आया, फिर पूरब के रास्ते से चलकर जिस गांव को जाना था वहां पहुंचा। ऐसे ही हम भूल करते हैं और उस भूल को हम होशियारी मानते हैं। भूल को होशियारी मानने का भ्रम। परिजनों में हम मोह करते हैं और उस मोह को करते हुए हम अपने को बड़ा विवेकी समझते हैं। हम अच्छा बड़ा अच्छा घर बसाना जानते हैं, व्यवस्था करना जानते हैं और कमाना भी तो जानते हैं। इसमें आप होशियारी समझते हैं किंतु भूल करते हैं और उस भूल को ही होशियारी मानते हैं, तो बताओ कि उस भूल से निवृत्ति कैसे हो सकती है। और कोई ज्ञानी बताएंगे तो उसको उल्टा मान लेते हैं ना। हे आत्मन, देखो कि जिन वस्तुओं से अत्यंत अधिक परिचय हो जाता है उन वस्तुओं में अवज्ञा हो जाया करती है। तुझे इन रागादिक भावों से वही शरीर से परिचय चिरकाल से चला आ रहा है, तुझे इसमें अरुचि भी नहीं मालूम होती। होता लिखा है होती। और तेरा अपूर्व कल्याण करने वाले जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उग आधा और सम्यक चारित्र, वो कभी खोड़ो हलंत जिसको कहते है, उनमें तुझे प्रीति स्नेह और ममता भी पैदा नहीं होती है। यानी आश्चर्य की बात कह रहे ज्ञानी जो लोग हैं, वो देखो आचार्यों ने भी कितने अलग अलग एंगल से, कितने अलग अलग पद्धति से, कहीं उसका व्यंग करके, कहीं कुछ ऐसी बातें बता के, फिर भी उसको उसकी भूल का एहसास कराना चाहते हैं। आत्म परिबोध, परिबोध कहो परिज्ञान कहो, यानी सर्वांगीण उसका ज्ञान हो जाना। सम्यक दर्शन नाम है सही देखने का, सम्यक यानी सही यथार्थ। प्रत्येक पदार्थ को अपने आत्म स्वरूप को सही देखो। क्या सही देखना है कि प्रत्येक पदार्थ निराला है, अपने में है, जानो रुचि करो और विश्वास करो, वही तो सम्य दर्शन है। यह मैं आत्मा कैसा हूं, यह मैं आत्मा कहकर वो साक्षात उसके प्रेजेंस बता रहे। यह मैं आत्मा जो कुछ भी हूं वह कोई एक सत है।
ये रचना कैसे हुआ? प्रत्येक पदार्थ को फिर अपने स्वरूप आत्मा सही जानो,
प्रत्येक पदार्थ को सही जानो। क्या सही जाना? ये इस रूप में नहीं हूं। प्रत्येक पदार्थ जुदा है, वो अपने अपने में परिणमन कर रहा है, और अपने आत्मा को सही देखो, जानो और रुचि करो। प्रत्येक पदार्थ को जानो, कैसे जानो? ये मैं नहीं हूं ऐसा जानो। जानने का भी तरीका है। अपने को कैसे जानो? यह मैं हूं ऐसा जानो। अपनी रुचि करो और विश्वास करो। बिल्कुल, परद्रव्यनतय भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। जैसा आपको जरी करना है तो कर लो। हाँ जिसको जो अच्छा लगता है वो देखो, वाक्य एक ही होता है, जिसको जिसमें रुचि है वैसा उसका अर्थ भी लगा लेता है जी। नहीं, मैं इन जनरल कहती हूँ, जब इसलिए पढ़ने की मुख्यता नहीं है स्टार्टिंग में, सुनने की है। वो कहते ना, दौल समझ सुन चेत सयाने। सुनने की क्यों? वाक्य वही होते हैं, शब्द वही होते हैं, उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे कहाँ रुकना, किस पर जोर देना, किस में वो लगाना, एक ही अर्थ में से जिसको पहले से जो भूल है, तो भूल उसको अगर भूल को भूल तरीके से नहीं जान रहा है तो उसमें से वो भूल भरा ही अर्थ निकाल देता है। और अगर उसको सही बात वो तो पता है, उसके लिए स्टार्टिंग में जो है ना सुनकर समझने की बात मुख्यता है। क्योंकि जो सुनाने वाला ज्ञानी है तो उसको पता है कि कहाँ क्या भूल हो सकती है जीवों की, सामने का उसका चेहरा देखकर भी उसको पता चलता है इसने कितना ग्रास किया कितना नहीं किया है। तो इसलिए ये तो हमेशा कहते ना, हमें वो शिकागो में ऐसा हुआ था, वो सामने वो लगाते रखते थे और घर में लोग सुनने लगे फिर, कि अभी तो सभी साधन आ गए ना, यहाँ एक रख दो लैपटॉप और फिर अपने अपने घर में सुनो उसको देखो। तो उसके लिए बहुत वहां पर यानी कैमरे वगैरह लगाए थे, और फिर सामने आने वाले लोग कम हो गए, फिर मना कर दिया था हमने वहां पर। मायामी में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉर्डिंग तो किया, उन्होंने लाइव रिले नहीं किया, बाद में कर दिया, उनके साइड पर रख दिया बाद में। नहीं तो क्या होता है, सामने कुछ नहीं है सुनने वाले तो वो बात भी नहीं निकलती है। देखो वो संडे पर वही वो एक वो कहती थी, मैं यहाँ ये लाके रखूंगी, वो रखेगी, मैं घर में बैठूंगी, आपके प्रवचन सुनूंगी, मैं तो वो नहीं चलेगा। हाँ प्रत्येक पदार्थ देखो कैसे जानना है, जैसे हे यज्ञ उपादेय में सात तत्वों को कैसे विभाजित करते हैं हम। स्वतत्व तो आश्रय करने योग्य है, पर पदार्थों को जानने योग्य है। कैसा जानने योग्य है? ज्ञेय कैसा ज्ञेय है? यह मैं नहीं हूं ऐसा जानने योग्य है। केवल ज्ञेय ने जानने योग्य ने उसी को जानते हो, रुचिपूर्वक उसी को जानते रहे, वो ज्ञेय नहीं कह रहे। पद पदार्थों को कैसा जानना है? यह मैं नहीं हूं ऐसा जानना है। हम तो पर पदार्थों को ही जानने में रस लेकर जान रहे, क्योंकि उसको ज्ञेय तत्व कहा ना, तो चलो हम उसी को जानते रहे। उसको कैसा जानना था? अरे भिन्न पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपने में है, उसका परिणमन अपने से अपने में हो रहा है। मैं इनका कर्ता नहीं हूं, ये मेरा कुछ करते नहीं है, ये मेरे सुख के भी नहीं और दुख के भी कारण नहीं है। ऐसा निश्चित करेंगे तब हमने पर पदार्थों को सही जाना। ये सही जानने की बात है। हम भी जान रहे, कैसे जान रहे? शरीर पर पदार्थ है परंतु उसको मैं रूप से जान रहे। अन्य पदार्थ ये मेरे ऐसा करके जान रहे, वो जानना सही नहीं हो रहा है। जानने के साथ वो मानना भी गलत हो रहा है। यहां लिखा ना यह मैं आत्मा, आपने कुछ कहा यह मैं आत्मा जो कुछ भी हूं वह कोई एक सत है। कई वस्तुओं से मिलकर आत्मा नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे मनुष्य पर्याय है, वो कई वस्तुओं से मिलकर बनी है ना, जिसको हम कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। इन्होंने शास्त्रीय शब्द नहीं वापरा, क्या कहते हैं, कई वस्तुओं से मिलकर आत्मा नहीं है। जैसे ये चीज है पेंसिल, कई वस्तुओं से, कई परमाणुओं से मिलकर बनी हुई चीज है। ऐसा मैं आत्मा हूं तो क्या कई वस्तुओं से मिलकर बनी चीज है, वस्तु यानी पदार्थ द्रव्य, मैं एक द्रव्य हूं, यहां लिखा ना, कोई एक सत है, कहा एक सत है, वो अनेक सत को मिलकर वो बंधन रूप से कोई चीज नहीं, जैसे स्कंद होते हैं। तो कई वस्तुओं से मिलकर आत्मा नहीं है, कोई भी जो पदार्थ सत है वह अकेले ही सत हुआ करता है। ये बहुत महान सिद्धांत है, क्या कहा, जो जो सत होते हैं वह अकेले ही सत होते हैं, यानी पदार्थ स्वयं द्रव्य अपने में स्वयं पूर्ण है, वो जुदा है, अकेला है। कई पदार्थ मिलकर सत नहीं हुआ करते, यानी प्रत्येक पदार्थ सत है तो जुदा जुदा सत है। यह मैं आत्मा एक स्वतंत्र सत हूं, यह मैं कहकर वो साक्षात बता रहे, यह मैं, इसमें क्या चीज भरी पड़ी है, कुछ देखो तो सही। देखो यह आंखों से तो दिखने में नहीं आता, आंखें खोलकर देखो तो बाहर की माया दिखती है, आंखें बंद करके देखो तो न भीतर और न बाहर कहीं कुछ नहीं दिखता है, कैसे देखे उस अपने ही आत्मा को, प्रश्न यही है ना। अच्छा तो कानों से जरा सुनकर बताओ कि यह मैं आत्मा कैसा हूं। ये कान तो बाहर की सुना करते हैं, भीतर की कैसे सुने, कभी तो पेट गुड़गुड़ करता है तो वह भी भीतर की चीज नहीं है, वह भी बाहर की चीज है। मेरी अपने आप के भीतर की बात तो कुछ सुनाई नहीं देती है, चाहे तो सूंघ सूंघ कर जान जाओ कि मेरा आत्मा कैसा है। आत्मा सूंघने की भी वस्तु नहीं है। ये लोग पूछते ना, आत्मा होता तो दिखाई देता ना, या ठंडा गर्म कुछ तो लगता। इसी प्रकार आत्मा रसना से चक्कर जानने की वस्तु नहीं है, छूकर भी जानने की वस्तु नहीं है कि कैसा गर्म है कैसा ठंडा है, कोई सा स्पर्श भी समझ में नहीं आता। यह आत्मा रूप रस गंध स्पर्श से रहित है, इसका सही दर्शन एक अपूर्व दर्शन है। यह मैं ज्ञान मात्र हूं और इसके अनुभवने का उपाय यह है, अपना ज्ञान ज्ञान के स्वरूप को जानने में लगे। अन्य कुछ तत्व को न जाने तो अपने स्वरूप जानने वाले ज्ञान के द्वारा अपने आप का दर्शन होता है। इतना सहज सरल है, क्या कहा, ये कहा सबको जानने में लगा है ना, बाहरी पदार्थों को। अन्य कुछ तत्व को न जाने, अन्य तत्व में आश्रय बंध भी सारे तत्व आ गए, मैं मात्र ज्ञान मात्र हूं, अपने ज्ञान के द्वारा अपने इस ज्ञान स्वरूप को ही जानने में लगे तो इस ज्ञान के द्वारा अपने आप का दर्शन होता है। मान्यता निर्णय सब हो जाएगा और वहां पर उस ज्ञान के द्वारा अपने में ही जानते रहना है, अन्य चीजों को जानना वहां से छूट जाएगा, उसको छोड़ना पड़ता है, छोड़ दोगे ये तो कहने की पद्धति है। यही रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो मो।